रश्मि जो उसका इंतजार कर रही थी, उसने जैसे ही आरवी को लंगड़ाते हुए शान के साथ आते देखा, तुरंत ही उसके पास पहुंच गई और तीखी निगाहों से शान को घूरने के बाद आरवी को चिंता भरी निगाहों से देखते हुए बोली, आरवी क्या हुआ तुझे, तू ऐसे क्यों चल रही है? शान जो उसके घूरने से ही चिढ़ गया था, उसने उसके सवाल सुने तो आरवी के कुछ बोलने से पहले ही उसको घूरते हुए व्यंगात्मक लहजे में बोला, शौक है उसे, लंगड़ा बनने की एक्टिंग करनी है ना उसे, तो उसी की प्रैक्टिस कर रही है। शान की बात सुनकर रश्मि की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने पहले अचरज भरी निगाहों से आरवी को देखा, फिर शान की तरफ निगाहें घुमाई तो उसकी घूरती निगाहों को खुद पर टिके देखकर समझ गई कि वो उसको ताना मार रहा था। उसकी आंखें तरेरते हुए शान को घूरा, फिर आरवी को थामते हुए बोली, आप ना अपना घमंड लेकर निकलिए यहाँ से, मैं संभाल लूंगी अपनी दोस्त को, और अगर उसकी इस हालत की जिम्मेदार आप हुए तो इस बार मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ये याद रखिएगा। रश्मि ने उसको धमकी दी, जिसका शान पर कुछ खास असर नहीं हुआ। उसने एक नज़र आरवी को देखा, फिर वहां से चला गया। रश्मि आरवी को सहारा देते हुए वहां से लेकर चली गई। उसने उसको चेयर पर बिठाया, फिर खुद उसके पास बैठते हुए बोली, अब बता मुझे तेरे पैर में क्या हुआ, कल जाते वक्त तक तो बिल्कुल ठीक थी और आज जब वापस आई तो एक टांग जख्मी करके आई है, कहीं इसके पीछे तेरे पागल पति का तो हाथ नहीं? आरवी ने घूर कर उसे देखा तो रश्मि ने बेफिक्री से कहा, घूरने से कुछ नहीं होगा, अभी उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है तो मैं इसी नाम से बुलाऊंगी उन्हें, जब ठीक हो जाएंगे और नॉर्मल इंसानों जैसे बिहेव करने लगेंगे, तेरी रिस्पेक्ट करने लगेंगे तो मुझसे भी उन्हें इज्जत मिल जाएगी। चल अब ये सब बातें छोड़ और बता मुझे तेरे पैर में क्या हुआ और कैसे हुआ। रश्मि जिद्दी थी तो आरवी ने अब उस बात को वहीं छोड़ दिया और सहजता से बोली, कल जल्दबाजी में चलते हुए पैर मुड़ गया था, पर चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आरवी का जवाब सुनकर रश्मि ने शक भरी नजरों से उसको घूरते हुए कहा, सच बोल रही है, कहीं अपने पति को मुझसे बचाने के लिए झूठी कहानी तो नहीं सुना रही मुझे? पागल है क्या, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, जब उनके वजह से कुछ हुआ ही नहीं तो मैं तेरे शक को यकीन में साबित करने के लिए उन्हें झूठे इल्जाम में तो नहीं फंसा सकती। मेरी इस चोट का उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरी लापरवाही की वजह से मेरा पैर मुड़ा था, उन्होंने तो उल्टा मेरी मदद की है, अगर आज मैं थोड़ा भी चल पा रही हूँ तो वो उनके वजह से है, वरना कल तो मुझसे पैर सीधा तक नहीं किया जा रहा था और जरा सा जमीन पर छूने पर ही तेज दर्द होने लगता था, अब तो बस थोड़ा ही दर्द है। रश्मि को उसकी बात पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर में रिहर्सल शुरू हो गई। आज रिहर्सल में दोनों दोस्तों के साथ मिलकर कंपनी खोलने का सीन हो रहा था, उनके बच्चे भी हो गए थे, एक के एक लड़का तो दूसरे के एक लड़का, जिसकी उम्र पहले वाले के बराबर थी और दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और एक छोटी बेटी थी। आरवी के दिमाग में यहीं से कुछ खटकना शुरू हो गया। खैर आज का दिन रिहर्सल में ही निकला, शान आरवी के पास नहीं था, फिर भी सारा वक्त उसकी नज़र उस पर थी। उसके आराम का इंतजाम भी करवा दिया था उसने, क्योंकि पैर लटकाए बैठे बैठे उसके पैर में दर्द होने लगा था, तो उसने वहां उसके लिए सोफा लगवा दिया था ताकि उसे पैर लटकाकर ना बैठना पड़े। वक्त पर उसकी दवाई भी भिजवा दी थी और रश्मि तो थी ही उसके पास उसका ध्यान रखने के लिए। घर जाकर कल की ही तरह शान ने उसके पैर की सिकाई की, जिससे आरवी को काफी आराम मिला और डिनर के बाद दवाई के असर से वो नींद की आगोश में चली गई। अगले तीन चार दिन यूं ही बीते। शान लगभग 24 घंटे उस पर नजर रखता था वहां कैमरे के थ्रू, और घर पर वो उसके पास ही रहता था, उसकी परवाह कर रहा था पर ऐसे जैसे एहसान कर रहा हो, बात बात पर यह जाहिर करता कि वो उससे नफरत करता था। आरवी को इन दिनों अर्जुन से बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, अब उसका पैर लगभग लगभग ठीक हो चुका था। रिहर्सल में दोनों दोस्तों की दोस्ती, फैमिली बॉन्डिंग, उनके बच्चों के बीच का रिश्ता दिखाते कुछ कुछ सीन्स की रिहर्सल हो चुकी थी। इसके अलावा जिन सीन्स ने आरवी को परेशानी में डाला हुआ था, वो था उन दोनों दोस्तों का साथ काम शुरू करना, पहले दोस्त पर लगा फ्रॉड का इल्जाम, दूसरे दोस्त का उससे दोस्ती तोड़कर उसको ऑफिस से निकालना, फिर उसका और पहले दोस्त की वाइफ का अफेयर दिखाना, पहले दोस्त के एक्सीडेंट का सीन। इस कहानी में कुछ बदलाव जरूर किए गए थे, पर आरवी को ये कहानी सुभाष जी की बताई कहानी जैसी ही लग रही थी। बहुत से सवाल घूम रहे थे उसके मन में, पर अभी तक वो श्योर नहीं थी, इसलिए उसने शान से इस बारे में कोई बात नहीं की थी, बस खामोशी से सब देख रही थी और टूटी कड़ियों को आपस में जोड़ रही थी। कल सब सीन्स के साथ में रिहर्सल होने वाली थी और अपने बेड पर बैठी आरवी के दिमाग में इस वक्त वही सब बातें घूम रही थी जबकि शान सो रहा था। आरवी ने शान को देखा, फिर मन ही मन कुछ निश्चय करने के बाद खुद भी लेट गई। अगले दिन की शुरुआत भी हो गई, जो कईयों की जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आने वाली थी। आरवी रोज की तरह अपने काम निपटाने लगी। अंशु को तैयार करने के बाद वो वापस अपने रूम में आई ताकि खुद रेडी हो सके। उस वक्त शान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। आरवी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई, शायद कुछ कहना चाह रही थी पर कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो कुछ पल अपनी होंठ को दांतों से काटते हुए परेशान सी शान को देखती रही, फिर उसने हिम्मत करके कहा, मिस्टर मल्होत्रा। शान उसकी मौजूदगी से अनजान तो नहीं था और उसको खुद से जूझते हुए भी काफी देर से देख रहा था, इसलिए उसने उसकी तरफ पलटे बिना ही कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? वो आज ब्रेक के टाइम पर मुझे माँ से मिलने जाना है, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, फोन आया था उनका, मिलना चाहती है मुझसे। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो वक्त नहीं मिलता, तो आज ब्रेक के टाइम रश्मि के साथ घर चली जाऊंगी, कुछ देर बाद वापस आ जाऊंगी। आपको उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनका रिश्ता मुझसे है, ठाकुर परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं उनसे मिलने जाऊंगी तो आप उन्हें तो इन सब में नहीं लाएंगे ना? आरवी ने घबराते हुए अपनी बात पूरी की। पिछली बार शान ने उन्हें लेकर ही उसको धमकी दी थी, और वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से शान का गुस्सा किसी भी तरह से अनुपमा जी पर निकले या उन्हें उसके वजह से कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए वो ये बात कहते हुए थोड़ा डर रही थी। और यही वजह थी कि उसने शान को पहले ही इस बारे में बता दिया था, ताकि वो बाद में कोई हंगामा न करे। शान ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर उसकी तरफ पलट गया और कुछ पल उसके चेहरे को गहरी निगाहों से देखने के बाद गंभीरता से बोला, बस एक घंटा होगा तुम्हारे पास, इतने में मिलकर वापस आ जाना, और अपनी माँ के बहाने अपने भाई या बाप से मिलने की कोशिश भी मत करना। भूलना मत, तुम कहीं भी रहो पर मेरी नजर हर पल तुम पर ही रहती है। आरवी ने हुंकारी भरी, पर मन ही मन उसको अब घबराहट भी हो रही थी। शान उसको घूरते हुए रूम से बाहर निकल गया, तब जाकर आरवी ने चैन की सांस छोड़ी और परेशान सी खुद से ही बोली, इनकी चील जैसी तेज निगाहों से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है, भैया से मिलने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। आरवी परेशान सी तैयार होने लगी। ब्रेकफास्ट के वक्त भी सब शांत थे। रोज की तरह शान ने अंशु को स्कूल छोड़ा, फिर आरवी के साथ ऑडिटोरियम पहुंच गया। रिहर्सल शुरू हुई और आरवी बड़े ही ध्यान से सब देखने लगी। उसके दिमाग में सुभाष जी की बताई बातें भी घूम रही थी, और अब उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था।